ಪರಮಾತ್ಮನೀಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾದರಣೀಯ ಶ್ರದ್ಧೇಯ ಶ್ರೀ 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 ಪ್ರೇಮ್ಪುರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಸ್ವಾಮಿ ಅಖಂಡಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಆಪ್ ಸಬ್ಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ವಿರಾಜಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ್. ನಮೋ ನಾರಾಯಣ್, ನಮೋ ನಾರಾಯಣ್, ನಮೋ ನಾರಾಯಣ್. 17ವೇ ಸೇ 21ವೇ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಠ ಕರೆಂಗೆ. ಓಂ ಸಹಸ್ರಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಹರ್ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದುಃ ರಾತ್ರಿಂ ಯುಗ ಸಹಸ್ರಾಂತಾಂ ಹೇ ಅಹೋರಾತ್ರವಿದೋ ಜನಃ ಅವ್ಯಕ್ತಾದ್ವಯಕ್ತಯಃ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಭವಂತ್ಯಹ ರಾಗಮೇ ರಾತ್ರ್ಯಾಗಮೇ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ ತತ್ರೈವಾವ್ಯಕ್ತಸಂಜ್ಞಕೇ ಭೂತಗ್ರಾಮಃ ಸ ಏವಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಲೀಯತೆ ರಾತ್ರ್ಯಾಗಮೇ ವಶಃ ಪಾರ್ಥ ಪ್ರಭವಂತ್ಯಹ ರಾಗಮೇ ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತು ಭಾವೋನ್ಯ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾ ಸನಾತನಃ ಯಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನತ್ಸತ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅವ್ಯಕ್ತೋಕ್ಷರ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ತಮಾಹು ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ ಹರಿ ಓಂ. ಸಹಸ್ರಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಹರ್ಯತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದುಃ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಯತ್ ಅಹ ಸಹಸ್ರಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾ ಜೊ ಏಕ್ ದಿನ್ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ಹಜಾರ್ ಚೌಕಡಿ ಯುಗ ತಕ್ ಅವಧಿ ವಾಲಾ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ರಾತ್ರಿಂ ಯುಗ ಸಹಸ್ರಾಂತಾಂ ತ್ಯಹೋ ರಾತ್ರ ವಿದೋ ಜನಃ. ರಾತ್ರಿ ಕೋ ಭೀ ಹಜಾರ್ ಚೌಕಡಿ ಯುಗ ತಕ್ ಅವಧಿ ವಾಲಿ ಯೋ ಪುರುಷ್ ಜೋ ಪುರುಷ್ ಹೇ ತತ್ವ ಸೇ ಜಾನ್ತೆ ಹೇ. ಅಬ್ ಈ ತತ್ವ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೇ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾಲ ಕರ್ಕೆ ಅವಧಿ ವಾಲಾ ಹೋನೆ ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ್ ಕೋ ಭೀ ಅನಿತ್ಯ ಮಾನ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ್ ಭೀ ಅನಿತ್ಯ ಹೇ. ಔರ್ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಕಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾದ್ವಯಕ್ತ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಭವಂತ್ಯಹ ರಾಗಮೇ ಸರ್ವಾಃ ವ್ಯಕ್ತಯಃ ಅಹರಾಗಮೇ ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್. ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರ ಭೂತಗಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆ ದಿನ್ ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಾಲ ಮೇ ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್, ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೇ ಅರ್ಥಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಸೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತೆ ಹೇ. ರಾತ್ರ್ಯಾಗಮೇ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ ತತ್ರೈವ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಘ ಕೆ ರಾತ್ರ್ಯಾಗಮೇ, ರಾತ್ರಿ ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಮೇ ಇಕೋ ಎಣಸೇ ರಾತ್ರ್ಯಾಗಮೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿ ರಾತ್ರಿ ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಾಲ ಮೇ ಭೀ ಉಸ್ ತತ್ರ ಉಸ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಘ ಕೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರ ಮೇ ಹಿ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ ಲಯ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೇ. ಭೂತಗ್ರಾಮ ಸ ಏವಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಲೀಯತೆ ಭೂತಗ್ರಾಮ ಸ ಏವಂ ಅಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭೂತ್ವಾ. ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಸ ಏವ ಅಯಂ ಭೂತಗ್ರಾಮ ವಹ ಭೀ ಯಹ ಭೂತ ಸಮುದಾಯ ಮೇ. ಭೂತ್ ಮನೆ ವೋ ಜೋ ಭೂತ್ ಪ್ರೇತ ಫಲಿತೆ ನೀ ಹಮ ಆಪ್ ಸಬ್ ಲೋಕ ಭೂತ ಹೇ ತೋ ಭೂತ್ ಜೋ ಹೇ ಭೂತಗ್ರಾಮ ಮನೆ ಭೂತ್ ಕೆ ಸಮುದಾಯ. ಯೇ ಭೂತಗ್ರಾಮ ಯೇ ಶರೀರ ಕೋ ಭೂತಗ್ರಾಮ ಹೋತೆ ಜಿಸ್ ಗೋಕುಲ ಗೋಲೋಕ ಯೇ ಹೇ ಕಿ ಭೂತ ಹೇ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ. ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಕಾ ಸಮೂಹ ಭೂತಗ್ರಾಮ ಮೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋಕರ್ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇ ವಶ ಕಿಯಾ ಹುವಾ. ರಾತ್ರಾಗಮೇ ರಾತ್ರಿ ಕೆ ಸಮಯ ಮೇ ಪ್ರಲೀಯತೆ ಲಯ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ. ಅಹರಾಗಮೇ ಪ್ರಭವತಿ ಪಾರ್ಥ ತೋ ದಿನ ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಾಲ ಮೇ ಫಿರ್ ಸೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ. ಶಸ್ಯಮೇವ ಜಾಯತೆ ಸಸ್ಯಮೇವ ಜೋ ಜೆಸೆ ಕಿ ಖೇತಿಯಾ ಪೈದಾ ಹೋತಿ ಹೇ ಫಿರ್ ಸತಿ ಕಟ್ ಜಾತಿ ಹೇ ಫಿರ್ ಕಟ ಏಸೆ ಹಿ ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ತು ಭಾವೋನ್ಯೋ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತ ಸನಾತನ ಪರಂತು ಉಸ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೇ ಹಿ ಅತಿ ಪರೆ ದೂಸರಾ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಲಕ್ಷಣ ಜೋ ಸನಾತನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಹೇ ವಹ ಕೌನ್ ಹೇ वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सभी भूतों के नष्ट होने पर वह नष्ट होता नहीं है। ये परमात्मा को नष्ट नहीं होना है, क्योंकि अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, वो दिखता नहीं है किंतु अक्षर है, इसलिए अक्षर ब्रह्म कहा ना, जो नहीं खंडित होता है, जिसका लय नहीं होता है, जो शाश्वत है, नाम अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। यम यम माने जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्य न निवर्तन्ते, प्राप्त होकर मनुष्य फिर से वापस नहीं आते, वो मेरा धाम है। तो इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण एक वस्तु विषय की स्पष्टता करना चाहते हैं कि हम काल को समझें। देखिए ध्यान दें, कल जहां विषय के विचार को छोड़कर के गए थे, पाश्चात्य प्रदेश हैं, उनका ये दुख का कारण जो है वो परिस्थितियां कहते हैं, परिस्थिति से ही दुख उत्पन्न होता है, ये पाश्चात्य यूरोप कहता है, अमेरिका खास रूप से कहता है, और दुख के कारण को वो 2000 साल से बड़े ढूंढते चले आ रहे हैं यूरोप। अमेरिका का आयुष्य तो केवल 350 साल है, दुख का कारण अगर निवृत्त हो जाए बस तो हम सुखी हो जाएंगे, किंतु दुख जो है वो परिस्थिति में ऐसी मान्यता पाश्चात्य की है, पूर्व नहीं ऐसा कहता है। पूर्व कहते हैं दुख का कारण परिस्थिति नहीं है, दुख का कारण परिस्थिति उत्पन्न करने वाली हमारी वृत्तियां हैं, वृत्तियों से ही उत्पन्न होती है परिस्थितियां। परसों जैसे आपसे बात कहा कि वो बहुत ही वो तेल मिर्चा खाने वाला को पाइल्स हो जाएगा, बहुत मीठा खाने वाले को डायबिटीज हो जाएगा, बहुत खाने वाला है बहुत मोटा। एक कोई महारानी रही, बहुत बड़े महाराजा के घर की और शरीर बहुत बड़ा भारी, उनके डॉक्टर के घर में हम रुके थे, तो डॉक्टर बोले स्वामी जी अब मैं क्या बताऊं महारानी जी को, उनके बड़ी प्रकार की व्याधियां हैं। मैंने कहा जो बड़े लोग होते हैं राजा उनके सेवक भी बड़े होते हैं, हाँ छोटे लोग को कोई सेवक होता नहीं है, वो अपने लेके चलता है, जो जो तंबू होता है ना सर्कस का तंबू, तो बड़ा तंबू होता है छोटा तंबू होता है, जो बहुत बड़ा तंबू होता है तो उसमें प्राणी भी बड़े होते हैं, प्राणी अधिक होते हैं तो उनकी समस्या भी ज्यादा होती है, छोटा तंबू रहे तो उनको प्राणी कम समस्या कम, तो बड़े लोगों की समस्या बड़ी होती है। तो जो कुछ कहना है कहो ना, डॉक्टर बड़े स्पष्ट वक्ता, स्वामी जी आई फील सो बिट सॉरी टू नरेट, जैसे कैसे बताया जाए, आप थोड़ा कह के बताइए। हमने गए माता जी आपकी पूरी तकलीफ का कारण जो है वो आपके शरीर का वजन बहुत बड़ा हुआ है, वजन थोड़ा कम कीजिए, तो ये जो घुटने हैं वो कमर का वजन सहन नहीं कर पाते हैं, तो फिर घुटनों में दर्द होता है, फिर कमर में भी दर्द होता है, और जब कमर घुटनों में दर्द होता है उसका वजन जब बढ़ जाता है तो वजन बढ़ने से फिर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है किडनी को इफेक्ट होती है, हार्ट को इफेक्ट होती है, फिर शरीर में बेचैनी रहती है, स्वभाव तमाम का पाप एक ही है। महात्मा जी मैं की करा, मैं क्या करूं? मैंने कहा खाना कुछ कम करो, और नमक है कम करो, और तेल और खटास और मिर्ची कम खाओ, और प्याज लहसुन बंद करो, सुबह शाम दूध जरूर पीना। दूध हाय राम, दूध दूध कैसे पीना है? अरे दोपहर को थोड़ा दही भी खाइए माता जी, वो अच्छा होता है। तेल मिर्चा खटास, तेल मिर्चा खटास नहीं खाने से तो गले में सब, स्वामी जी मैं सच बताऊं, मैं स्वामी जी तला हुआ और मीठा तो बिल्कुल खाती नहीं स्वामी जी, मैं तो बिल्कुल मिठाई नहीं खाती हूं, मैं तला हुआ भी नहीं खाती हूं स्वामी जी। मैंने कहा ये जो बगीचे में इतने सारे सुअर है ना, सुअर वो भी नमक नहीं खाते हैं, वो भी तला हुआ भजिया नहीं खाते हैं, वो मिठाई नहीं खाते। हाय राम मुझे आप सुअर कह रहे हो? सुअर नहीं कह रहे, मगर सुअर क्यों कहा सुअर? क्योंकि वो तला हुआ नहीं खाते, वो मिठाई नहीं खाते, वो सैंडविच नहीं खाते, वो पास्ता नहीं खाते, वो पिज्जा नहीं खाते, वो कोक नहीं खाते, किंतु दिन भर कुछ कुछ खाते ही रहते हैं। सुबह थोड़ा बादाम खा लिया, फिर थोड़ा काजू खा लिया, थोड़ा अंजीर खा लिया, थोड़ा पिस्ता खा लिया, थोड़ा एक अमरूद खा लिया, थोड़ा एक सेब खा लिया, थोड़ा एक केला खा लिया, थोड़ा एक ककड़ी खा लिया, दिन भर खाते ही रहो वन वे ट्रैफिक, तो फिर क्या हो जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा। तो ये जो वृत्तियां हैं वो हमारी वृत्तियां ही हमारे सुख और दुख का कारण है, न कि परिस्थितियां। परिस्थिति तो उत्पन्न हम करते हैं, किंतु परिस्थिति उत्पन्न करने की वजह, उनके कारण, वो कॉज ये क्या है, ये है हमारे आत्म संयम की कमी। जब आत्म संयम के प्रति हमारी जागरूकता हो जाए, आत्म संयम के प्रति हम अवेयरनेस कर लें कि भाई मेरा दोस्तों में हूं उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत। हम कितना ही कहते हैं स्वामी सत्संग में तो सब सुनते हैं, पर क्या करूं, नीचे जाके होता नहीं है घर में, तो स्वामी जी ऐसी बात नहीं है। आपने मन में एक बार निर्णय कर लीजिए, असंभव नहीं है। ये अमेरिका जाने वाली जो हवाई जहाज है ना, वो हमेशा रात में 1:30 बजे 2 बजे ही जाती है, तो हवाई जहाज उड़ने के आधे घंटे में वो आपको एक कोक पिला देंगे, कोई ड्रिंक कर देंगे, फिर वो तला हुआ काजू दे देंगे, तला हुआ मोगर दाल दे देंगे, फिर उसके बाद में आपको कुछ टोस्ट दे देंगे, पता नहीं क्या 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 चलता है। उस कम से कम 3 घंटे तक खाना खिलाना चाहिए। क्यों कहते हैं, इस समय में अमेरिका में दोपहर का 12 बजने वाला है, इसलिए अमेरिका में, अरे अमेरिका का 12 बजने वाला तू मेरा क्यों 12 बजा रहा है भाई, मगर वो आपके मुंह में नहीं डालते हैं। आप उनको हाथ जोड़ के बोल दो, मैडम मैं सोना चाहता हूं, मुझको जगाना नहीं, वो आपको नहीं पूछेगी ना। किंतु हमारा गुजारा होता नहीं, अरे हमने टिकट का पैसा दिया है भाई, टिकट में सब फ्री मिल रहा है, तो खाना तो चाहिए ना। तो जो बंदा, आप अपने घर में सोच लो, कभी आपने रात में 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे ये कभी भी ये तला हुआ बादाम, तला हुआ काजू और तला हुआ मुगर दाल, थोड़ा समोसा, थोड़ा सैंडविच, थोड़ा कॉफी, थोड़ा कोक, थोड़ा पेप्सी, हाँ और थोड़ा उसके पीछे वो कुछ और लॉन्ग स्टिक है, वो सूप स्टिक, बाद में सूप, ये रात में 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे कभी खाते हैं क्या? मुसलमान लोग तो खाते हैं रोजा के दिन में, हाँ, क्योंकि उनको सवेरे 3:30 बजे खाने के लिए मना हो जाए, और दिन भर तो खाते नहीं। अभी आप तो शाम को घर से चले थे, आपका फेयरवेल डिनर हुआ था, आपको 150, 200, 300 आदमी ने बोनवॉइस कहा था, आपके लिए चीयर्स किया था, और आपके लिए भोजन में 28 आइटम रखे थे, हर खाने का आपका जो डिश है उसमें स्टार्टर ही इतना था कि मेन कोर्स आप खा नहीं सकते हो। तो इतना सब करने के बाद में तुम्हारा पेट है कि पटारोच है, हाँ? फिर बोलते हैं महात्मा जी देखिए ना मेरे को कितनी तकलीफ है, बहुत गैस होती है। मैं कहता हूं एटम बम क्यों नहीं फूटता है नारायण, आपकी वजह। तो ये जो कारण जो हमारा है वो हमारी परिस्थिति यानी हमारा मन है। इन मन को कैसे देखना है, अरे समय की जागृति से। तो जो समय है उसको थोड़ा समझना चाहिए। ये समय कैसे होता है, मान लीजिए आप सत्संग में तो आते ही हो, अच्छी बात है यानी बात है, किंतु बाहर गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो यहां पर राजू भाई हैं, थोड़ा एसी बढ़िया कर देते हैं, तो ठंडी हवाएं शांत है, और महाराज धीरे धीरे महाराज बोलते चले जाएं, बढ़िया सी कुर्सी हो, पीछे आप सीट लगा लें, ठंडी हवा आती रहे, तो एक मिनट के लिए सो गए। कितनी देर के लिए सो गए नारायण बोलो, 1 मिनट में, और 1 मिनट सो गए परवाह नहीं, किंतु 1 मिनट में आपने यात्रा भी कर लेते हो। इस 1 मिनट की नींद में आपको सपना आ गया। क्या सपना आ गया, कि आपका जन्म हुआ था, फिर आप बड़े हो गए थे, फिर उसके बाद में आपकी नानी के यहां रहे थे, क्योंकि आपके पापा परदेश गए हुए थे, तो नानी के यहां रह करके आपने फलां स्कूल में जाते थे, आपके अमुक दोस्त थे, फिर बड़े हो गए, फिर आपके पापा आ गए, उन्होंने आपको बड़ा घोड़े में चढ़ा करके शादियां कराई, आपकी शादी हो गई, और शादी के बाद में आपके बच्चे हो गए, अब बच्चों की शादियां हो रही हैं, बच्चों की शादियां हो गई, बच्चों की शादी होते होते फिर वहां पर वो लेन देन के बारे में बस खत्म। वो आपके वो जो समधी है उनके यहां थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई, तो वो किसी समधी के संबंधी ने हवा में टाम करके एक बंदूक पिस्तौल फोड़ दिया, उसकी आवाज से आप जग गए, तो देखा क्या हो रहा है, प्रेमपुरी में कोई महाराज प्रवचन कर रहे। वो कितने क्षण हो गया, एक मिनट घड़ी में देखा तो अरे ये तो मैं तो 7:30 में सत्संग चालू हुआ था और पाठ करते करते 7 मिनट हुआ था, तो अभी तो 7:38 हुआ है। वो जो पाठ की मधुर आवाज में आप सो गए, तो 1 मिनट के अंदर में आपने पूरी यात्रा है आपके 3 पुस्तक की यात्रा कर ली। तो एक क्षण में आपका ये समय कितना चला गया, इस समय को समझना चाहिए ये कैसे समय जाता है। मान लीजिए कि एक बहुत गरम गरम तवा, बहुत गरम तवा है, तवा भी क्या है नारायण, देखिए वो हमारे आंध्र प्रदेश में एक जैसे राजमुंड्री है तो वैसे ही वहां पर कोतवाला सा भी है, उधर में एक स्थान है भद्राचलम, तो भद्राचलम में गोदावरी नदी के तट पर भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, तो वहां पर वो एक रामदास नाम के भक्त थे, वो बादशाह के वकील थे, बादशाह के मंत्री थे, बादशाह के सलाहकार थे, उनको सपने में आया, बड़े राम के भक्त थे, उनकी बड़ी रचनाएं बड़ी है, अच्छी अच्छी रचनाएं, तो उनको सपने में आया तू अच्छे से रहता है मैं जल में हूं मेरे को बाहर निकाल, तो गोदावरी के नदी से भगवान का विग्रह बाहर निकला। कैसा बाहर निकला है विग्रह कि भगवान जो बैठे हैं जैसे श्रीडी साईं बाबा का चित्र होता है ऐसे राम जी बैठे हैं, खड़े नहीं बैठे, और उनकी गोदी में सीता जी, उनको राम जी ऐसे करके रखे हैं, ऐसा विग्रह है ऐसे करके, फिर लक्ष्मण जी खड़े हैं, हनुमान जी भी, तो ये विग्रह निकला तो सब लोग उनको बड़ा सम्मान कर, लोगों ने बहुत पैसा दिया, उन्होंने एक पहाड़ पर मंदिर बना दिया, राम जी को स्थापित कर दिया। जो जगह में अच्छा होता है तो बुरा तो होता है, कुछ लोगों ने कंप्लेन कर दी कि प्रजा का पैसा है बिना राज की आज्ञा के ऐसे खर्च करने का इसको अधिकार क्या है, ये मंदिर में कितना पैसा लगा तो तमाम पैसा उससे वसूल करना चाहिए। राजा ने उनको बंद करके रख दिया, राजा तो खान के कच्चे होते हैं, वो बंद करके रख दिया। फिर वो रामदास ने भगवान के पास में बोलते रह रहे तू कैसा है भाई, तू मेरे को बोलता है मेरे लिए मकान बना और मेरे को तो जेल में बंद कर दिया, तुम्हारा मर्यादा यही है क्या। तो राम जी स्वयं सपने में गए बादशाह के और कहा तुम्हारा कितना पैसा होता है, देखो ये इतना पैसा है, सोने के सिक्के जिसमें राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी के छाप रहे और पीछे श्री राम लिखा रहे सोने के सिक्के, तो वो उन्होंने दे दिया, देख तुम्हारा इतना सूद के साथ, अब लिख के दे दे पर्चा कि पैसा मिल गया है, रामदास को मुक्त किया जाए, हाँ मिल गया है। वो ही पत्र उन्होंने ये हमारे ये जेल में डाल दिया तो रामदास जी मुक्त हुए। किंतु इतना ही नहीं, राम भगवान है वो बादशाह के लिए भी, तू फटाफट सुन रहा है मेरी बात, तेरी पत्नी के लिए भी मैं इतना गहना देके जाता हूं, तो वो भी गहना भी उनको दिए थे, वो अभी भी है, वो घड़े के अंदर अभी रखते हैं उसको, साल में एक बार दो बार निकालते हैं रामनवमी के दिन में, आंध्र के जो ये चीफ मिनिस्टर रहेंगे वो हेलीकॉप्टर में आएंगे, वही कन्यादान करेंगे पूजा करेंगे, तो हमको अनेक बार वहां पर वहां रहने का मौका मिला। अब वो जो पालकी होती है ऐसे टिकट लगा के लोग आते हैं 10,000, 7,000, 5,000 वो बैठने के लिए, क्रिकेट नहीं है ये, वो राम जी का कल्याण है ना, कल्याण बोलते हैं शादी को कल्याणम, तो वहां बैठने के लिए। फिर एक एक मौका होता है, लोग हैं लाखों रुपया देते हैं पालकी उठाने के लिए, नदी किनारे होता है वहां से उठा करके मंदिर में जाना, तो हम तो सन्यासी हैं, हमको तो बड़ा प्यार से देखते हैं, हम भी पालकी उठा लिए, पालकी उठाना मुश्किल नहीं है किंतु उस गर्म रेते में जो नदी का रेत गर्म है वो चैत्र नवरात्रि के नवमे दिन शुक्ल पक्ष की ऊपर वो पहाड़ में चढ़ना, रेत में चलना, फिर डामर सड़क के उस पर चलना, लगता है हाँ जल्दी पहुंचे, वो एक सेकंड है एक युग के मापिक लगता है। देखा हमने क्या कहा, 1 मिनट नींद आ गई तो 1 मिनट की नींद में आपने 40 साल देख लिया, 50 साल देख लिया, 60 साल देख लिया, किंतु यहां अगर वो गर्म रेत में चलना है, गर्म सड़क में चलना है, तो 1 सेकंड है एक युग के मापिक लगता है। देखिए 1 सेकंड आपका युग हो गया, किंतु अगर आपको किसी आपका प्रेमी है आपकी बहुत प्रियतम, दोस्ती क्यों नहीं है, हाँ तो दोनों आपके हाथ में हाथ मिला करके बात करो, इतना प्यार से बहुत दिन के बाद मिले, 2 घंटा हो गया, अरे 2 घंटा हो गया, लगता है कि अभी तो 2 ही मिनट हुए हैं, अभी ना जाओ छोड़ कर अभी तो दिल भरा नहीं, वो 2 घंटा से गपशप कर रहा है फिर भी सोचता है ये 1 मिनट हो गया है। ये काल क्या है भाई, ये काल जो है उसको समझना है बहुत जरूरी बात है। हम बहुत छोटे रहे, हमारी दादी है वो भोजन बनाती थी, क्या क्या बोलती थी, ओ दुर्गा सप्तशती बोलती थी, भगवत गीता ललिता सहस्त्र नाम, ओ विष्णु सहस्त्र नाम, सब कुछ बोलती थी। पूरा खाना बन जाने तक उनका सब पाठ है होता रहेगा। उसमें एक चीज बढ़िया बोलती थी, वो हमको बचपन से याद है, वो बोलते थे सुदामा की पतेली। वो क्या होता है सुदामा की पतेली, वो कहते हैं कि एक समय विट्ठल वर चाल्या, वो सुदामा तो कृष्ण के यहां गए थे हमको पता है, किंतु कृष्ण भी एक दिन सुदामा जी के यहां आए। कृष्ण सुदामा जी के यहां आए तो सुदामा ने कहा ये सब तो कृष्ण का ही दिया हुआ है, हमारा घर में जो पहले एक बड़ा पतेली था आज उसी में सब्जी बनाओ, उसी में खाना दो। तो उसमें दाल बनाया और एक शेर आटे का वो आटा गूंद लिया रोटी बनाने के लिए, आधा शेर की रोटी हो गई। आजकल के जैसे एक एक रोटी उतार के नहीं, पहले महिलाएं बना के रख देती थी, हाँ पहले थोड़ा ऐसा एक एक गरम गरम खिलाती थी। अब आधे शेर की रोटी बन गई, आधा शेर बाकी है। तो कृष्ण ने कहा क्यों भूखा बैठना है घर में, चल थोड़ा नदी में नहा करके आ जाते हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि देखिए लोग मेरे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, तुम कृष्ण के इतने निकट हो, कृष्ण की लीला देखी कि नहीं, तो मुझे आपकी लीला दिखाई। अरे क्या पागल लीला विला क्या दिख रहा है, चल नहा लेते हैं। नहीं मुझे दिखाओ। अरे क्या दिखना है मुझको दिखाओ, ऐसा बात करते नदी में। कृष्ण बोले छुप रहे ना यार, चल इधर से डुबकी मार, चल सामने कौन पहले निकलता है। दोनों जल में कूद गए। अब सुदामा जी ने सिर ऊपर उठाया, उधर सुदामापुरी नहीं थी, चारों ओर केवल जल ही था। हाँ क्या गये वो घर ने, क्या गया घनश्याम, क्या थी आव्यो आ सिंधु, आ जल मा थी जो बाहर निकलू तो कहीं भगवान नु ध्यान करो। दामोदर ने दयारे आवी, सिंधु वच्चे गाम करू, सिंधु मां वळी मानस बचाव्या, अवळी रीते चाले जे, ब्राह्मण शूद्र सर्वे सरखा एकमेक नी कन्या ले छे। सुदामा जी कहे लोक ने, सुदामा जी बाहर निकला, क्या करना है भाई, वो चारों ओर पानी ही पानी है, उसके बीच में छोटा गांव हो गया, गांव में लोग खड़े थे। तो उन्होंने कहा महाराज हमको सुदामापुरी जवाने केटला दिवस था छे, उन्होंने कहा कि 60 साल से जहाज गया है, उसको वापस आने में 60 साल लगेगा और तुमको लेके जाएगा तो 120 साल आपको सुदामापुरी जाने में लगेगा। अरे मैं क्या करूं अभी, तो शेठ ने कहा चिंता ना करो, मारे पेट छे पवित्र पुत्री, ते तमने आपिस कन्या, सुदामा जी कहे जो परणु अहिया शूद्र तो थाय अधर्म अन्याय, पर नाक तो रही छे सुदामापुरी मा, त्या कोण जाणवा बैठू छे। अरे हाँ सिंधु देश मा प्रेमदा परण्या, एने पण पांच पुत्र थया, पड़ोस मा एक अबड़ा मुई तेने देखी समझाने गया। कौन देखने वाला है इधर, क्या बात है, चलो शेठ की लड़की से शादी कर लिए, पांच बच्चे हो गए, पड़ोस में किसी स्त्री की मृत्यु हो गई तो जाकर के स्मशान गए। वहां क्या हुआ, जो पति था वो पत्नी के सब को गोदी में लेकर के बैठा। सुदामा बोले ये क्या बोले, चुप, हमारे यहां है स्वामी होते थाय सतियो, हमारा नियम है जो स्वामी होता है वो सतियो होता है, हाँ चुप रहो। तो सुदामा बोलती अगर मारी पत्नी नो पिंड पड़ से तो मारे पण बढ़वू पड़ से। सुदामा जी सोचते थे चार दिन के बाद में उनकी पत्नी भी मर गई, बोले कि मेरे को लोग पकड़ेंगे, कोठी पाछड़ जई बैठा, एकदम पीछे घुस के बैठ गए। लोक लुच्चा लई लाकड़ियो कोठी कमाड़ ले जई जुवे, सुदामा ने झाली ने अड़सेलो काढ़ियो, स्मशान लईने चाले, पानी फूट से फडला फूट से, बड़ू बड़ू नारी संगे उभा रहो, एक भात कहो छो, हाँ नदी है नावा, थोड़ा एक मेरे को नहा लेने दो। और डुबकी मारी, कृष्ण ने खींच लिया, बोलते अरे तू पाछड़ आवे, हूं पहला, दे थाली, सेनी थाली, सेनी वातो, घना वर्षो बीती गया। घर में आवीने जुए तो रामानी रसोई जुए तो अच्छेरनी रोटली बाकी। देखिए एक शेर आटा गूंदा गया था, आधा शेर आटे की रोटी बन गई थी, आधा शेर आटे की रोटी बाकी थी। वो इतना सब नाटक हो गया तब भी वो एक पाव अभी भी बाकी था, एक पाव आटे की रोटी में इनकी पूरी सृष्टि। तो जो समय है, कृष्ण कहते हैं कि सहस्त्र पर्यंतम हरित ब्राह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रा नाम तेव रात्र, ये ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा जी की रात्रि। तो ब्रह्मा जी की रात्रि तो क्या कहा कि उतना नहीं है, सहस्त्र युग पर्यंतम, वो क्या कहा, हजार चौकड़ी, हाँ 1:4 कह दिया, एक को चार से गुनाकार कर लो, इतना युग हो जाएगा तो उसमें ये जीव का आना जाना होता रहता है। अब वो कहते हैं किसकी मुक्ति होती है, जो तत्व को जानता है उसकी मुक्ति होती है। क्या तत्व है, एक व्यक्त तत्व है, अव्यक्त तत्व है। एक व्यक्त जो है वो तो हम लोग जो दिख रहे हैं वो व्यक्त है, तो हम लोग सर समझते हैं कि जो शरीर है वो मैं हूं, ना कहते हैं देव के देव है वो इंद्र है, और आसुरों के तरफ से भी जो है वो दोनों ही आसुर के राजा देव के राजा दोनों मिलकर के ब्रह्मा जी के पास मिले, महाराज हमको कुछ आत्म शांति और उन्नति के लिए ज्ञान दीजिए। बोले जो तुम देख रहे हो उसी को चाहो वही आत्म ज्ञान देगा। तो विरोचन तो इतना खुश हो गए, वाह देख रहा हूं वो तो शरीर है, खाओ पियो मस्त रहो, हाँ बस खत्म, खाओ पियो सब आसुर लोग खाना पीना मस्त रहना, ताम ताम करने लगे। इंद्र ने सोचा कैसे हो सकता है, ये जो देह है वो तो नाशवान है, क्षण भंगुर है, वो तो देह जो है हमको पुण्य से प्राप्त हुआ है, क्षीणे पुण्य मृत्यलोके विसंति, जब पुण्य बुरा हो जाएगा तो मेरा इंद्रपद भी चला जाएगा, तो इसलिए ये देह तो नहीं। फिर वापस गया, महाराज मैं क्या करूं, नहीं जो देख रहे हो उसको और देखो। तो बोले कि शरीर जो है वो तो नहीं है, तो शरीर के अंदर क्या तत्व है, तो प्राण है, तो प्राण सत्य है क्या, वो भी नहीं हो सकता है महाराज, प्राण तो ये पूरा समष्टिगत है, पूरा विश्व में प्राण है, ये जो सूर्य है चंद्र है ग्रह है नक्षत्र है भूमंडल में ये मंगल है गुरु है बुध है, वो तमाम जो है वो प्राण से है, वो केवल वायु ही गैस ही है, तो ये कैसे, क्योंकि उनको भी विलीन हो जाएंगे, प्राण तो शाश्वत कहां है। बोले नहीं और भी है, प्राण का भी प्राण है, तो प्राण का प्राण कौन चलाता है, बोले आकाश चलाता है, जब सृष्टि जब नहीं थी तो केवल आकाश था, खम वायु फिर वहां से वायु फिर वायु से पृथ्वी ही आप, फिर ऐसे करके करके ये पंच महाभूत भी, तो पहले आकाश था, तो बोले आकाश है, तो आकाश क्या है, शून्य है अव्यक्त है, अभी मेरे हाथ में मुट्ठी है खोल दिया कुछ दिखता नहीं, किंतु मुट्ठी खुलने पर भी बंद करने पर भी दोनों अवस्था में उसके बीच में खाली जगह तो है, जिसको हमने आकाश कहते हैं, वो तो खाली तो जगह है। देखिए कि एक कमरा हो, एक कमरे में आप हवा रखो, किंतु हवा को वैक्यूम किया जा सकता है कमरे से, किंतु आकाश को कैसे वैक्यूम करो नारायण। एक घड़ा है, घड़े के अंदर खाली जगह है जिसको आप घड़ाघास कहते हो, घड़ा फोड़ दो अब आकाश कहां गया, अरे आकाश दिखता ही नहीं, क्या आना क्या है जाना क्या है, अव्यक्त है किंतु है तो सही। घड़े के अंदर खाली जगह है, इस मकान के अंदर खाली जगह है, बाहर भी खाली जगह है, हृदय में भी खाली जगह है, इसलिए पेट में भी खाली जगह है, इसलिए बोलते हैं कि बोलिए सब लोग बोलिए बड़ी अच्छी बात है। कल रात एक सज्जन का फोन आया, वो 97 ईयर्स ओल्ड, वो यात्रा करते करते द्वारका जा रहे थे, उनकी बेटियां लेके जा रही थी, वो हठात से याद आ गया, अरे अहमदाबाद में स्वामी अध्यात्मानंद रहते हैं, फोन करो पता लगा, तो एक दो चार लोगों को पूछ लिया तो बताओ क्या शिवानंद आश्रम का है, तो आ गए रात में, बोले महाराज जी मेरे को अभी भी आपके मंत्र याद है, देखिए मैं अभी सीधा खड़ा होकर बोल रहा हूँ, क्या है बोलिए सब लोग खाना आधा करो, बोलिए खाना आधा करो, खाना आधा करो, पानी डबल पियो, कसरत तीन गुना करो और चार गुना हंसो। कोई मर गया तो जाकर के ही क्यों, तो स्वामी जी ने कहा हंसो हमने से मारेंगे लोग ऐसे नहीं होता, बोलो चार गुना हंसो और आठ गुना काम करो और सब समय राम कहो। खाना आधा करो बोलो, पानी डबल पियो, कसरत तीन गुना करो, चार गुना हंसो, आठ गुना काम करो और सब समय राम कहो। ये बात है, वो बड़ी सुंदर बात है कि कहते हैं कि शतम विहाय स्नातव्यम सहस्रम विहाय भोक्तव्यम सर्वम तत्वा हरि मजे, 100 काम छोड़ के नाओ और 1000 काम छोड़ के खाओ, हाँ और क्या बोल दिया, सब कुछ छोड़ करके हरि भजन कर लो। तो यहां क्या कहना क्या चाहते हैं कि जो अवकाश है, जिसको हमने आकाश कहते हैं, सब जगह है कि हमने पेट को आधा भरेंगे तो आधा पेट में खाना जाएगा, एक बटा चार है पानी रहेगा, एक बटा चार पेट को खुलने के लिए बन चाहिए। नलियां खाली रहती है तो खून उसमें दौड़ता है ना, तो अवकाश जो है जिसको हमने आकाश कहते हैं, इट्स ए मस्ट, इट्स ए साइन क्वा नन, अगर अवकाश नहीं है आकाश नहीं है तो हमारा गुजारा नहीं होता है। इसलिए हमको हमारे जीवन में इस आकाश को देखना। तो अव्यक्त क्या है, अव्यक्त आकाश है, किंतु अव्यक्त होते हुए भी बिना आकाश के हमारा गुजारा नहीं है। तो ये आकाश कहां से आया है, वो जो परमात्मा है वही हमारे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बने हुए हैं। परमात्मा ही है, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिबा अंतर बहिर्त सर्वम व्याप्त नारायणस्त। जो हम हमारे समाज में जो कुछ भी दिखने में आता है, जो नहीं भी दिखने आता है, उसके अंदर बाहर केवल वही एक अंतर बहिस्त सर्वम, उसके अंदर बाहर केवल वही है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु व्याप्त नारायण। तो ये जल में स्थल में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, पवन तू पानी तू भूमि तू भूधरा, तो केवल वही परमात्मा है, वही व्यक्त भी है वही अव्यक्त है। जो अव्यक्त है वह व्यक्त बनता है। क्या कहा 12वें अध्याय में महाराज कि आपको कौन सा दोस्त पहले प्रिय है बताइए, भक्त कौन सा प्रिय है आपको, ये हमारा सगुण साकार को चाहने वाला प्रिय है कि निर्गुण निराकार को प्रिय है। अरे पहले तो निर्गुण निराकार ही होता है, भक्तों के प्रति करुणा करके वो सगुण साकार होता है, किंतु सगुण साकार होते हुए भी वह भक्तों की करुणा के लिए ही, किंतु वस्तुतः फिर वह भी हवा में आकर के हवा में विलीन हो जाता है। द्वारिका में शब्द भयो शब्द गयो ढाड़े, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ सिधार हे गोविंद हे गोपाल अब तो शरण, दार प्रहर युद्ध भायो भारे। कितना युद्ध हो गया, भगवान कहां से, अवकाश से तो प्रकट हुए ना, द्वारका से, वहां वो जो हाथी है वो उसका युद्ध हो रहा है, वहां से आने के लिए अवकाश से आना हुआ है ना, तो अवकाश से वो तो हमारे मधु भाई हैं, कल भाई संडे हॉलीडे था क्या, नहीं नहीं महाराज जी कलकत्ता जाके आए, तो कैसे कलकत्ता गए, ढिम भाम भूम ऐसे बोल करके कोई मंत्र बोल दिया तो कलकत्ता में आ गए, हाँ छुम भाम हूं ऐसे बोल दिया तो, ऐसे थोड़ा होता है, वो तो रेलवे एयरपोर्ट गए होंगे, एयरपोर्ट में हवाई जहाज में, फिर हवाई जहाज उड़ा है उतरता है। तो ये अवकाश तो है, उसको तो अव्यक्त जो है उसको जानना ही पड़ेगा। अब एक बार जब अव्यक्त को जानते हैं, अब क्या होता है, भूतग्राम से वायम भूत्वा, तो ये जो भूतग्राम है हमारी इंद्रियां हैं, हमारे मन हैं, हमारी बुद्धि है, हमारी चेतना है, हमारा शरीर है, वो उनका निर्माण तो होता है, वो निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है भाई, उसको क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग होता है ना, कि भाई आप कितना कागज है वो फाड़ते हो, जब कागज आप फाड़ते हो तो ये नहीं सोचना कागज फाड़ता हूं मैंने, लोग ढेर कागज फाड़ करके टोकरी में डाल देते हैं, हाँ। ये हमको यहां आने के लिए आदरणीय हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी साहब हैं, श्रद्धेय श्री मदनलाल दालमिया जी महाराज, उन्होंने पत्र लिखा, महाराज हमसे रूठ गए क्या, बोला उन्होंने कहा सादर धोक लिखा, सादर धोक, अब धोक तुम्हें एक मिनट तो सोचा ये धोक क्यों पहले दिखा रहा है, गुजराती में धोक होता है डंडा होता है, ओ सादर धोक, धोक मारवाड़ी में बोलते हैं सादर प्रणाम, मेरी धोक ले लो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, सादर धोक का महाराज लिखा है, महाराज हमसे रूठ गए क्या, जैसा उनका भाव है इसे लिख दिया, कोई आडंबर नहीं है, दम्ब नहीं है चलने का, हमसे रूठ गए क्या, फिर दूसरा लाइन में लिखा है गलती तो हमारी भी है कि हमने आपको बुलाया नहीं। एक के पीछे एक उनके तीन चिट्ठी आ गई, दो तो आ गई और तीसरा है कोई बंदा लेकर के आ गया हाथ में, महाराज जी आपके लिए, अरे भी क्या बात है, मदन लाल जी की चिट्ठी, चलो ठीक है। मैंने उसी चिट्ठी को काटे ऐसे थोड़ा धीरे से काट करके, जो चिट्ठी थी कवर कर काटा थोड़ा मामूली चिट्ठी थी, उसमें लिख दिया इसके पहले भी आपके दो पत्र प्राप्त हुए हैं, ये तीसरा पत्र है, हमने टेलीफोन से आपके दफ्तर में बता दिया है हम फला तारीख को पहुंचेंगे, इस फ्लाइट से आएंगे और वापसी हम उस ट्रेन से जाएंगे, ये हमने लिख दिया है, कृपया आपके पत्र के लिए धन्यवाद। उनके जो चिट्ठी था उसी के अंदर लिखकर उसको डाल करके उसी कवर को चिपका दिया वापस, और जहां टू लिखा था वहां फॉर्म लिख दिया, प्रूफ था वहां टू लिख दिया, जा पोस्ट कर जा, क्या बात है। तो बोलते हो आप उसको उसी को महात्मा गांधी जी के लिए से उपयोग करते हो। उसके बाद में दो चिट्ठियां और आ गई, क्या भाई आप आने के लिए अपना टिकट बना लेना, पैसा हम दे देंगे। उनका व्यवहार है, उनको करना पड़ता है, किंतु ये क्यों कह रहे हैं, हमने ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम जो गतिविधि है वो पांच चिट्ठी आ गए, काफी सारे जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन स्कूल है, वो रोज 6-8-10 ऐसे बड़े बड़े लिफाफे आते रहते हैं जिनमें 10-12 चिट्ठियां होते हैं, उनके हमारा कोई संबंध नहीं है, किंतु हम वहां जाते रहते हैं इसलिए वो लोग सूचना देते हैं, वो आगे छपा रहता है पीछे कोरा होता है, हम सबको पकड़ के फाइल कर लेते हैं, क्यों पीछे कोरा है उसमें हम लिख सकते हैं, उसको रिसाइकल किया। तो जब उसको लिख गया उसने भी उपयोग कर लिया, मतलब फाड़ना नहीं, क्यों उसको रद्दी वाले को बेचे गए। आजकल स्वामी जी रद्दी वाला लेता नहीं, लेता है तो जमा तो रख, तभी रद्दी वाला लेगा। अपनी दादी को याद करो, दादी क्या करती थी, दादी ये करती थी, पुरानी दादी जबकि स्टोव नहीं था, जबकि गांव में चूल्हा था, चाय सवेरे बनेगी उसको लोटे में भर करके वो कहां रखती थी, उसी चूल्हे में रख देती थी, तो दोपहर को 4 बजे तक वो चाय गर्म रहेगी, वो थर्मोस नहीं था, उसी से गुजारा होता था। अरे हमारे बिरला जी महाराज हैं, उनके पास में घनश्याम दास जी बिरला जी, उनके पास में मदन मोहन मालविया जी महाराज हैं, वो बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी के लिए दान लेने के लिए गए, पहले बात तो कर लिया था कि मैं किस लिए आना चाहता हूं। उस समय बिरला जी महाराज हैं अपने बगीचे में बैठे हुए थे और बैठ करके माला लेकर के जप कर रहे थे, सर्दियों के दिन शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो वो उनका जो आए तो कुर्सी तो रखी थी वहां पर, तो कुर्सी तो आए पंडित जी बिराजिए, तो उन्होंने सेवादार को बोला रामादीन पंडित जी आले हैं दिया जलाओ, तो वो छोटी कुप्पी लेके आए, छोटी कुप्पी समझते हो ना, वो छोटा एक होता है टमटमियू, वो छोटा सा उसमें कांच भी होता है साफ करे, छोटा केरोसिन, तो उन्होंने एक माचिस किया, दूसरा किया, तीसरा किया, 3 माचिस में वो जलाया, ऐसे करके देखे बिरला जी रामादीन है, ये एक दिया जलाने के लिए 3 तिल्ली बर्बाद करते हो, ऐसे कहा तो मालविया जी खड़े होकर चलने लगे, जब कल्याण करो देखे 3 तिल्ली में ये चूचू कर रहा है तो मेरे को क्या देगा ऐसा। तो बिरला जी तो बड़े ज्ञानी पंडित हैं भाई, दुनिया को ऐसे थोड़ा, पंडित जी बैठे बैठे एक एक तिल्ली बर्बाद होने से बचाता हूं तभी दान करता हूं, ये जो अव्यक्त व्यक्त की व्याख्या है हमारे जीवन में संतुलन करना, ये ढंग है संतुलन करना। हाँ पहले देखिए, पहले क्या होता था, जो केला होता है ना केला, तो केला लोग खा लेने के बाद में छिलके नहीं फेंकते थे, हाँ छिलके को धोकर के छिलका काटते थे और उसमें पेरा वो तेल हिंग मिर्ची का छौंक और भुना हुआ बेसन उसमें डाल दिए तो केले के छिलके का बड़ा स्वाद होता था। करेले का जो छोड़ा है उसको फेंकते नहीं थे, उसको रोटी में मिला करके उसकी भी परौठी बनाकर मेथी से भी बढ़िया बनती, मुठिया थेपला, रात में खिचड़ी बच गई तो उसका भी मुठिया थेपला, रोटी बड़ी नरम बनती है, बड़ा सुंदर बनती है, कुछ फेंकने वाली बात नहीं थी। अभी ऐसे करके फेंक देने का जो व्यवहार हो गया है वो असंतुलन हो रहा है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमको अपने जीवन की हर छोटी पहलू में जागृति रखना चाहिए। ये पुराने जो वो पान बीड़ी के गल्ले होते हैं ना, पान बीड़ी के गल्ला, जहां पर पान है बीड़ी है गल्ला है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो एक रस्सी होती है जूट की रस्सी, वो लटका के रखते हैं, क्यों बीड़ी लेगा तो उसी से ही वो सुलगा रहता है। हर चीज का देखो भाई, वो पहले जो इलायची, इलायची जो होती है इलायची, उसके जो छिलके निकलते थे तो उससे भी महिलाएं खरगोश चिड़िया बतख सब बना लेती थी, रुई का बना करके कर लेती थी सब चीज को। आम है, आम की गुठलियां नहीं फेंकते थे, गुठलियां हैं वो छत में सुखा लेते थे और उसको तोड़ करके भून लेते थे, भून करके टुकड़ा करके ओ थोड़ा बर्तन में भर के रखते, क्यों खाने के बाद में मुखवास है। हर चीज का ये उपाय रहा हमारे यहां, अभी तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे मन की ही हमारी परिस्थितियां ही हमारी वृत्तियां ही हमारे दुख का कारण बनी है। वो जो प्रकृति को जब देखेंगे तो प्रकृति को देखना कि जो पुरानी परंपराएं रही वो तो अयोग्य नहीं थी। पुरानी परंपराएं जो है, अभी आप लोग शैम्पू से नहाते हो, शैम्पू पता है शैम्पू क्या होते हैं, उसमें आधा तो पशु के चर्बी होते हैं और शैम्पू की इतनी लंबी बोतल होती है, इतनी सुंदर है, नाजुक कमनी है, आधी तो अंदर हवा रहती है, आधी तो अंदर हवा रहती है, थोड़ा सा शैम्पू से नहा लेते हो और साबुन से नहा लेते हो। अरे दादी बताती थी वो जो साबुन से नहाए ना तो साबुन को फिर खड़ा रखना, ऐसे नहीं रखना, यूं खड़ा रखना, तो उसकी ये साइड है वो पानी में। आजकल देखो कहीं भी जाओ तो साबुन है वो आपकी साबुन की जो ट्रे है उसमें ऐसे रहता है जैसे पानी में सबमरीन। हाँ वो महिलाएं हैं अपना बाल ऐसे करके पहले यूं करके दोनों अंगूठे और उंगली के बीच में रखती थी अपने, जब वो बाल बनाती थी अंगूठे, क्योंकि वो तेल डालती थी तब भी। आजकल तो तेल डालते नहीं महिलाएं, तेल डालना तो सूर्य हैरा, मैं थोड़ा हनुमान थोड़ी हूं, हाँ तो तेल डालते नहीं तो बाल उड़ते रहते हैं, भोजन में जाओ तब भी उसको हमने बोलते हैं सुंदरी कृपा, और राम कृपा होता है सुंदरी कृपा। तो कुछ भी नहीं करना, चुप से रख देना, कुछ बोले तो बोले हाय राम मेरा तो नहीं, मैं तो बाप कर कराई, क्या करो मुश्किल काम है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है हाँ उनके प्रति जागृति, उसको बोलते हैं अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस। गीता हमें ज्ञान देकर के मुक्ति का पथ दिखाना चाहती है, तो हमारे बंधन जो इससे मुक्ति हो, ये तो तुम्हारे हमारे बंधन ये, जो नाखून काटते थे लोग तो नाखून को क्या करते थे, एक पुड़िया बना करके एक डब्बे में जमा रखते थे, क्यों कोई आने जाने वाला हो बोले गंगा जी में डाल देना, क्यों हम मरने के बाद में हमारी हड्डियां जाए कि नहीं जाए, नाखून जाए ये भी हमारी हड्डियां होती है, तो कम से कम उनका जीते जीतो विसर्जन हो जाए। जहां खड़े वहां नाखून नहीं काटते थे, क्यों नहीं काटते थे, अगर चिड़िया खाएगी वो चावल का दाना तो चिड़िया मरेगी, इसलिए नहीं करना। तो ये इतनी छोटी छोटी बातें जो दादी बताती थी, वो हल्दी है ना वो बाजार से नहीं आती थी, हल्दी है उसकी गांठे लाते थे, गांठे घर में रखते थे, समय समय पर कूट लेते थे, क्यों, अरे आजकल अमेरिका में कहीं गए तो समझी वुड लाइक टू हैव सम कोल्ड ड्रिंक, भाई मैं नहीं, टर्मरिक ड्रिंक, टर्मरिक ड्रिंक क्या होता है, ये हल्दी का पानी, ये बताओ डॉक्टर एस बोर्डन ने जो माइंड बॉडी एंड मेडिसिन इंस्टीट्यूट जो हमारे न्यूयॉर्क सिटी में है वो जापान से बनवा करके अमेरिका में बिक्री करते हैं टर्मरिक। अरे मेरे प्यारे हम पैदा हुए तब से हमको हल्दी हमारी माँ लगा रही है, हाँ हमारे पिता ने शादी किए थे माँ ने शादी तो वो हल्दी लगाई थी पहले तब तो शादी किए थे, हमारी दाल में हल्दी है, हमारी सब्जी में हल्दी है, हमारे चिवड़ा में हल्दी है, हमारी पूरी में हल्दी है, हमारा थेपला में हल्दी है, और हल्दी के बिना तो हमारा भारतीयों का गुजारा नहीं होता है, हल्दी माता हल्दी पिता हल्दी बंधु हल्दी सखा, हाँ अरे कुछ नहीं है तो बम्बई में आ गए तो आंबा हल्दर, हाँ छह महीना तक हमारे काचा कचुम्बर में भी हल्दी होती है, और तुम हमको बता रहे हो हल्दी की गांठ ले लो और थोड़ा उसको थोड़ा जलाओ, उसको आग पकड़ लेगी तो सूंघ लो, कितना बुरे से बुरा सर्दी होगा ऐसे करके चला जाएगा, थोड़ा सूंघ लो, हाँ हमको ये विक्स जरूरत नहीं है आपको। तो ये हमारे जो लोग थे पुराने कि हल्दी क्यों चाहिए, हींग क्यों चाहिए, ये अचार में इतना नमक क्यों डाल देते हो, अरे प्रिजर्वेटिव है उसको कोई नकली चीज नहीं डालना पड़ेगा, सिरका सुरका नहीं, वो तमाम चीज को प्राकृतिक रूप से करने के लिए प्रकृति तत्व को ही जानने के लिए, जो उन प्रकृति को जाएंगे तो अप्राकृतिक नहीं होगा, अप्राकृतिक नहीं होगा तो वो व्यक्त अव्यक्त का भेद समझ में आ जाएगा, व्यक्त अव्यक्त को समझ लेंगे तो हम थोड़ा समय को भी समझ लेंगे। तो हमें जो कुदरती चीज है, कुदरती, अभी लोग बहुत पैसा लगा करके पेडिक्योर मैनिक्योर कराते बहुत पैसा, अभी वो पहले जो दादी थी वो क्या करती थी, अरे मुल्तानी मिट्टी को पांव में लगा करके नहाते थे लोग, मुल्तानी मिट्टी को पांव में, अरे क्या पांव में लगाना महाराज, पेट में बच्चा रहे तब भी मुल्तानी मिट्टी खा लेते थे, हाँ वो तो मुल्तानी मिट्टी मंगा करके वो माई खा ही लेती, कौन से देश के भी है क्यों नहीं रहे, थोड़ी राख भी खा लेती थी, हाँ वो थोड़ा कोयला भी खा लेती थी, क्यों खा लेती थी, बच्चा तगड़ा होता है भाई, उससे बच्चे को मजबूत होता है, बच्चे को लॉलीपॉप नहीं बनाना है, बच्चे को लल्लू लल्लू नहीं बनाना है, हाँ, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, वो हाथ में पांव में मिट्टी लगाना है, अरीठा रीठा से ना लेने तक, तो ये तमाम बातें क्यों जरूरी थी? ये आंवला जरूर खाना है, च्यवनप्राश जरूर खाना है, क्यों? कैल्शियम। अभी जो महिलाएं हैं उनको जो मेंसुरेंस पीरियड जब पूरा होता है, मेनोपोज, तो मेनोपोज में उनका वो जो धुआं जो होता है उसमें बहुत कैल्शियम चला जाता है। कैल्शियम चले जाने से उनको क्या होता है, उनको जो होता है उसको बोलते हैं हड्डियां पोली हो जाती है। हड्डियां जो पोली हो जाती है तो थोड़ा तो वो जो थोड़ा गिर गए तो भूखो, क्यों हो गया इसको, वो वजह क्या है? कैल्शियम कम हो गया। दूध पीते नहीं, दही खाते नहीं, वो आंवला क्यों रोज खाने के लिए कहा था? आंवले के समान तो उसको च्यवनप्राश करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े लोग बड़ी कंपनियां खोल के च्यवनप्राश बनाते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अभी हमने हरिद्वार से शिवरात्रि के समय में गया, क्या बोलते हैं, अफ्रीका, तो मैंने बोला कि अफ्रीका में क्या लेके जाऊं, उधर अभी आम का मौसम है, चलो छोड़ दो, च्यवनप्राश लेके जाते हैं। च्यवनप्राश में बोला किलो किलो का छह टीन मेरे को दे दे, तो गुरुकुल कांगड़ी का लेके आया। तो गुरुकुल कांगड़ी क्यों? हरिद्वार में तो बड़े बाबा लोग हैं अपना, नहीं नहीं सब बाबा लोग हैं ना, किराए से थोड़ा आप दो टन आप बनाओ, तीन टन आप बनाओ, वो दुनिया से बन के आता है उनका लेवल, तो आप पांच लोट को टेस्ट कर लो, सब गोबर के माफिक दिखेगा और कोई स्वाद सबका अलग, गुरुकुल कांगड़ी स्टैंडर्ड है। तो ये जो आंवला है उसको खाना, नींबू को खाना, कच्ची केरी खाना, ये अभी गर्मी जो आ जाएगी, प्याज और आम का कच्चा कचुम्बर, क्यों ये सब? फ्लू नहीं लगने के लिए। हाँ, ये बाफलो कच्ची केरी को उबाल करके खाना, क्यों? लू नहीं लगने के लिए। तो जो हमारी पुरानी दादी थी उसके समय को पकड़ो, उसके समय को। महाराज जी अभी आप क्यों आप 18वीं सेंचुरी में जाते हो? अरे जो मॉडर्न लोग हैं उनको बोलो कि बेस्ट म्यूजिक कौन सा है, तभी बोलेंगे बाख एंड बीथोवन। और बाख एंड बीथोवन कब है? वो तो 18वीं सदी का है, रशियन ओल्ड चर्च का म्यूजिक है, तो ये बाख है, वो बीथोवन है। फिर पुराने जा रहे हैं, हाँ, कान में नहीं पहनते थे, अभी कान में भी 6-6 इंच का पहनते हैं, नहीं करके यहां से यहां तक पहनते हैं, पूरा इतना पहन लेते हैं। अरे पहले तो वो दादी लिखवाती थी, हाँ, बजरंग बली, हाँ, वो पूरे पहले लिखाते थे ना ट्र करके, अभी तो पूरे बदन में लिखाना चालू कर दिया, हाँ, आगे पीछे गले में नाक में कहां कहां लिखाते, हाँ। तो ये क्यों होता है? पुराने समय को पकड़ना ही पड़ेगा, उस समय को अगर आपने पकड़ लिए, आपकी गतिविधियां हैं वो उसके अंदर में एक नूतन नहीं किंतु प्राकृतिक आभा उत्पन्न हो जाएगी, प्राकृतिक आलोक उत्पन्न हो जाएगा, प्राकृतिक चेतना। तो कृष्ण हमको बूढ़ा बनाने के लिए नहीं कह रहे, कृष्ण हमको पीछे जाने के लिए नहीं कह रहे, कृष्ण बोल रहे हैं अपने उस वास्तविक समय की स्थिति को पहचानो, उस वास्तविक भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलियते, क्योंकि भूत्वा भूत्वा क्या कहा है, तो उत्पन्न होते हैं प्रकृति में लीन होते, फैशन भी ऐसे होती है, हाँ, फैशन भी ऐसे होती है, पहले एक पेंट आया नीचे से पोड़ा हो गया, बोले लड़कियां है ना गरारा पहनती है, पेंट पोड़ा हो गया, अभी क्या हो गया, छोटा कट कर दिया, हाँ, कट कर दिया, वो आधी निकर भी नहीं पहन, क्या बोले बुरमड़ा बोलते हैं, हाँ, बुरमड़ा बोलते हैं, कुछ कुछ कर लिया, बुरमड़ा पहनने से ही लोगों को सुविधा होती है। मैंने कहा अच्छी बात है, कम से कम आपका 1.5 मीटर कपड़ा तो कम हो गया, तो क्या नथिंग रॉन्ग इन दैट। हाँ, ये हर चीज को देखते 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 अपने इन्वेस्टिगेशन करते करते आत्म चैतन्य को आंखें खुली, कान खुले, दिमाग भी खुला, और तमाम दुनिया को देखेंगे, पता हो जाएगा हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। कुदरती जीवन जीने के लिए, यापन करने के लिए वही भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में, भूत बने हम सब लोग हैं, प्रकृति के वश में रात्रि के प्रवेश काल में लय होते हैं। रात्रि माने अज्ञान है, दिन का अर्थ ज्ञान होता है, जो ज्ञान में रहेगा वो चैतन्य में रहेगा, अज्ञान में रहेगा वो लय हो जाएगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरा अंधस्य, देखिए आजकल जब भोजन करने बैठते हैं, बोले मैं घी खाते नहीं, और क्यों क्यों नहीं खाते नहीं भाई, हाँ घी नहीं खाना है अभी, तो घी खाओ। पहले लोग क्या करते थे, एक चाय में भी एक चम्मच घी डाल के, रात में सोने के पहले गर्म दूध उसके अंदर में एक चीज, और सुबह उठेंगे तो गर्म दूध में पिपड़ी मूल, गंठोड़ा, सूंठ, ये तमाम डाल के पीते थे। अच्छा, अभी जो पहले जो प्रसूता होती थी, प्रसूता को प्रसूति जब हो गई तो प्रसूति होने के बाद में उसके खाट के नीचे एक बड़ा चौकी में वो छाना जो गोबर होता है ना कंडा वो डाल करके रखते थे, तो उससे उसको गर्मी लगती रहेगी। एंटीसेप्टिक था, सिकाई होती थी, उसको स्टिच पकते नहीं थे और प्रसूति के बाद में वो बस तीन दिन में चार दिन में ठीक हो जाती थी, दस दिन में तो घूमने लगने के। अभी आजकल क्या होता है प्रसूति में डेढ़ महीना दो महीना तक वो ऐसे भैंस के माफिक बैठी रहती है। अरे पहले क्या था, काली मुसड़ी धोली मुसड़ी मेथी चमेन बरदारो वेकरियो घी सूठ गोड़ टोपरू पता नहीं क्या, काली मुसड़ी धोली मुसड़ी मेथी चमेन बरदारो वेकरियो सूठ गोड़ इतना जब दादी है अच्छा करके अपनी बहू को खिलाती थी तो बहू है स्वस्थ रहती थी, कोई मुश्किल बात नहीं थी। तो अभी अभी आम्स्टरडाम से एक बिटिया आई अपने भाई की शादी में, हमको मिली कहीं फंक्शन में, गुड़िया कैसी हो, ठीक ही हूं। मैंने कहा देख मम्मी इस बार आई ना प्रसूति में, मैंने कहा था मैं सब चीज भेजता हूँ, जामनगर नो मसालो बहुत सारा हो वसानो मैं भेज देता हूँ, तो खाई क्या समझी, इतना कमाल हो गया। पिछले साल मेरी सास आई थी, तो पिछली बार जब सास आई ना दो महीने तक मैं इसे गोबर के जैसे पड़ी थी, इस बार मम्मी आई ना बड़ा फटाफट में खड़ी हो गई। क्यों, सास सास जो है बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है, वो बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है, अपने ढंग से सोचती हो गया में, वो भी गया तो रांची के पास होता है और रांची जो है वो ऐसा और गया भी मात्र श्राद्ध करने वाला, तो बोले कि वो आई तो उन्होंने तो मेरे को एंटीबायोटिक्स कितना देके देके स्वामी जी, इट टुक थ्री मंथ्स टू गेट मी इन ऑर्डर स्वामी जी, ये मम्मी आई तो बस फटाफट बढ़िया हो गए। तो ये जो पुराने लोग हैं क्यों इतना करते थे, आजकल सीजेरियन कराने के बाद में थर्ड डे लड़की बगीचे में बैठती, बैठ करके क्या करती है, कुछ कुछ करती रहती है, और फोर्थ डे फिर एडमिट होती है, क्यों, वो सेप्टिक हो गया। सेप्टिक तो होना ही है, अगर आप आज अपने सीजेरियन कराया और दूसरा दिन अगर बगीचे में बैठ जाओ, पहले क्या है प्रसूति हो गया तो 10 दिन तक उसके कमरे में कोई जाना नहीं, वो दाई जाती थी बच्चे को तेल मालिश करने, प्रसूता को तेल मालिश करने के लिए 10 दिन तक कमरे में कोई जाएगा नहीं और उनके घर का कोई खाना। देखिए ये हमारे समय को देखना है, गतिविधियों को देखना है, बहुत जागृति की बात है। वो कहते हैं कि किसके घर में मृत्यु हुई तो 10 दिन तक उसके घर का खाना खाना नहीं, क्यों खाना नहीं है, अरे देखो भाई जिसकी मौत हुई आपको क्या पता है कि उसके घर में लोगों को खिलाने पिलाने की सुविधा है कि नहीं है, किसके घर में मृत्यु हो गई, जलाने के लिए भी पैसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आकस्मिक किसकी मृत्यु हो गई तो कहां जाएंगे लोग। इसलिए दूसरी बात है मृत्यु हो गई है तो वो अपना शोक बनाएंगे कि आपको चाय बनाकर पिलाएंगे, आपकी देखभाल करेंगे, ऐसे ही किसके यहां प्रसूति आ गई, प्रसूति आ गया तो 10 दिन सूतक, ये सूतक क्या होता है, सूतक का मतलब क्या होता है, अरे देखो भाई अगर बेटा हुआ है और आप उनके घर में गए आपको चेवड़ो पिड़ाई खिलाते रहे तो प्रसूता को कौन ध्यान देगा, 10 दिन घर में भगवान की पूजा करना नहीं, अगर सास बैठ के घंटी बजाती रही 3 घंटा तक वो प्रसूता है भूखी मर जाएगी उसको कौन देगा, इसलिए प्रसूता को देखभाल करने के लिए, नवजात शिशु को देखभाल करने के लिए, उसकी परिचर्या करने के लिए घर में घंटी नहीं बजाना, पूजा किसी को दो, घर में उनके चाय पानी नहीं पीना। तो ये तमाम जो है इनके पीछे एक हेतु था, एक विज्ञान था, वो परिस्थितियां नहीं थी, वह एक मानसिक स्थिति जो परिस्थिति को अनुकूल करके करते। गीता के माध्यम से कहा कि ये भूत ग्राम परस्तस्मातु भावोन्य, ये कहा कि पर उस अव्यक्त से अति परे जो भाव जो है ना ये बहुत जरूरी बात है, कहा कि सनातन अव्यक्त है सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। वो देखिए कि ये तमाम बातें हैं वो लौकिक बातें हैं, लौकिक बातों को ध्यान रखना है, क्यों लौकिक बातों को इसलिए ध्यान रखना है हमारे जीवन को संतुलित करने के लिए, हमारा जीवन जो संतुलित रहे। अब जीवन का संतुलन क्या होता है, जीवन का संतुलन होता है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेतसु युक्त सपना बोधस्य योगो भवति दुखा, बहुत खाना नहीं बिल्कुल खाना नहीं, बहुत सोना बिल्कुल सोना नहीं, बहुत बोलना बिल्कुल बोलना नहीं, कोई राग है द्वेष है काम है क्रोध है इन तमाम से परे हमेशा आनंद में किसी भी अवस्था में अपने को शांत रखे स्वस्थ रखे और सद्भाव से रहे। आपका जो मूल स्वभाव है आनंदो यम शांतो यम आत्मा सच्चिदानंद रूप, ये आपका मूल स्वभाव है। तो उस स्वभाव को अगर पकड़ के रहेंगे तो फिर आपका नाश नहीं होगा। तो क्या होगा, कहा कि यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम अव्यक्तोक्षर। उस अव्यक्त जो दृश्यमान नहीं है वो क्या है, आपके संस्कार। संस्कार है बोली के ले, ये मैं बोलता हूं, ये आपको तुलसी देता हूं, लो तुलसी लो। तुलसी तो दृश्यमान है, संस्कार दृश्यमान नहीं है। बेटी को ये मां चाहती है कि ससुराल में जाएगी, ससुराल वाले भजन करते नहीं, ससुराल वाले भगवान में मानते नहीं, ससुराल वाले गुरु सब परंपरा में मानते नहीं, और ससुराल वाले हैं बड़े अहंकारी लोग हैं, मद मखाने मद बोलने से बांग्ला है मद बोले की शराब, वो शराब पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, जुआ खेलने वाले, ये ऐसे इंग्लिश मेंटालिटी वाले लोग हैं, तो मेरी बहू का क्या होगा। तो गुरु महाराज के पास महाराज जी कहिए हमको यही बोलना बेटे, मंत्र ले लो, किसी को दिखाने की जरूर नहीं है। नाये धोए चिंता मत करो, हाँ अपने मन में चुप से ध्यान करो, जप करो, सब काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, अलग से समय निकाल करके बैठने की जरूरत नहीं, सबसे प्यार से बात करो। आपकी ही स्वभाव से, स्वभाव दिखता नहीं है, स्वभाव पकड़ा नहीं जा सकता है, स्वभाव को अनुभव किया जा सकता है। वो अव्यक्त है किंतु व्यक्त हो सकता है, जो संस्कार है वो अव्यक्त है किंतु व्यक्त हो सकता है। आपके गुण से, आपके सद्भाव से, आपकी करुणा से, आपकी प्रेम से, आपकी सेवा से, आपके पवित्रता से, आपके चारित्र से, धीरे धीरे करके दो चार साल में सब परिवार के लोग हैं वह भी घंटी बजाने लग गए, वह भी तिलक डालने लग गए, उन्होंने भी गंगा जाना चालू किया, वो भी सत्संग आना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अव्यक्त था, व्यक्त हो गया। हमने कुछ भी कड़क नहीं बोला है, खड़े लाइन में रहो, सास बैठो, ऐसे नहीं कहा। हाँ, बड़ा विनोद की वार्ता है कि एक सज्जन है, वो अपने बड़े ही मातृभक्त थे, तो वो जब टूर में जाना था, इन्हीं दिनों में जाना था, वेकेशन लगते लगते एग्जाम के दिनों में स्कूल खुलने वाले थे, बोले 3 महीना मेरे को जाना है अमेरिका टूर में, देख तू अपने बच्चे को कैसे संभालती है, ऐसे ही अपनी सास को भी संभालना। तो बोले ठीक बात है। जब वेकेशन पूरा हुआ तो पत्नी ने बच्चों के बाल कटवाए, सास को बोला देखो अपने बाल कटवा लो, क्यों आपका बेटा बोल के गया है, सब बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म सिलवाए, सास को बोला तुम भी सिलवा लो, तुम्हारा बेटा बोल के गया है, सबका एडमिशन कराया, सास का भी करा दिया, स्कूल जाओ, सबका दफ्तर लिया, बस में छोड़ने गई, सास को बोले चलो स्कूल जाओ। तो ये जो बात है ऐसे नहीं करना चाहिए, उसके पीछे समझदारी है। समझदारी क्या है, युक्त अयुक्त, योग्य अयोग्य, तो ये अव्यक्त व्यक्त, तो ये जो तमाम इनको समझ लिया एक बार बस, फिर आपको यम प्राप्य न निवर्तन्ते, इसकी प्राप्ति होने से तद्धाम वर्म मम, वो मेरे धाम को अवश्य प्राप्त होता है। यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं। हरि ही ओम तत्सत, परमात्मा धन्यवाद आपके उपस्थिति के लिए, आपके समय दान के लिए, और आपके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।